एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं ग्विन हाइमन रूबियो के उपन्यास आईसी स्पार्क्स की।
हाँ, एक बहुत ही मार्मिक उपन्यास है ये। 1998 में आया था और फिर ओपरा बुक क्लब में चुने जाने के बाद तो काफी चर्चा में रहा।
बिल्कुल, और इसकी पृष्ठभूमि भी खास है। 1950 का दशक, पूर्वी किंटकी के अपलाचियन पहाड़, मतलब एक ऐसी जगह और ऐसा समय जहां पुरानी सोच परंपराएं बहुत गहरी थीं।
सही कहा, और ऐसी जगह पर अगर कोई थोड़ा भी अलग होता था, जो लीक से हटकर हो, तो उसे शक और यहां तक कि डर से देखा जाता था।
तो आज हम इसी उपन्यास में गोता लगाएंगे। कहानी क्या है, आईसी का सफर कैसा रहा, कौन से बड़े सवाल ये किताब उठाती है, इन सब पर बात करेंगे।
जरूर, चलिए शुरू करते हैं कहानी से। जगह है पॉपुलर हॉलर केंटकी, शांत खूबसूरत पहाड़ी इलाका।
और हमारी नायिका है 10 साल की आईसी स्पार्क्स, अपने दादा दादी मटानी और पटानी के साथ रहती है।
हाँ, और वो उसे बहुत प्यार करते हैं। उसका बचपन एकदम सुरक्षित प्यार भरा बीत रहा है, प्रकृति के करीब। वो खुद भी तेज दिमाग वाली खुशमिजाज बच्ची है।
एक सुकून भरी जिंदगी कह सकते हैं।
बिल्कुल, लेकिन फिर अचानक सब बदल जाता है।
हाँ, यही कहानी मोड़ लेती है। आईसी के शरीर में अजीब अनियंत्रित हरकतें शुरू हो जाती हैं।
वो जैसे झटके लगना, आंखें फड़कना या सिर का अजीब तरह से घूमना, और सिर्फ हरकतें ही नहीं, आवाजें भी।
आवाजें? कैसी आवाजें?
जैसे मेंढक की तरह टर्राना या फुकारना, और ये सब उसके काबू से बिल्कुल बाहर।
ओह, मतलब ये टिक्स थे?
हाँ, ये टिक्स थे, और यहीं से आईसी का वो लंबा संघर्ष शुरू होता है जो करीब 10 साल चलता है, अपनी ही देह से और उस दुनिया से जो उसे समझ नहीं पाती।
सोचिए जरा, एक 10 साल की बच्ची, उसका अपना शरीर ही उसे धोखा दे रहा है, और उसे पता भी नहीं क्यों।
और नहीं उसके आसपास के लोगों को पता है, यही इस उपन्यास का मेरे ख्याल से केंद्रीय बिंदु है।
बिल्कुल, ये सिर्फ आईसी की कहानी नहीं, ये समाज की कहानी भी है कि जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते जिसका हमारे पास कोई नाम नहीं होता, तो हम उससे कैसे निपटते हैं।
अक्सर डर और शक से आईसी को अजीब, पागल, यहाँ तक कि कुछ लोग उसे शैतान का साया तक समझने लगते हैं।
तो सवाल ये उठता है कि ऐसी हालत में कोई अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान कैसे बनाए रखे, जब शरीर भी साथ ना दे और समाज भी खिलाफ हो जाए।
और ये बाहरी दबाव आईसी के अंदर भी उतर जाता है। वो खुद ये मानने लगती है कि उसके अंदर दो आईसी हैं।
दो आईसी? मतलब?
हाँ, एक असली वाली आईसी जो अच्छी है, प्यारी है, और एक दूसरी आईसी जो एक तरह की बुरी ताकत है जो उसके शरीर पर कब्जा करके ये सब करवाती है।
ये तो बहुत दुखद है। समाज का डर और अज्ञान एक बच्चे के मन को इस तरह तोड़ सकता है।
हाँ, ये दिखाता है कि हमारी पहचान कितनी नाजुक होती है और बाहरी दुनिया उसे कैसे प्रभावित कर सकती है।
यहाँ ये जानना जरूरी है कि आईसी की जो हालत थी उसे आज हम टोरेट सिंड्रोम के नाम से जानते हैं।
बिल्कुल, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब दिमाग और नर्वस सिस्टम से जुड़ी एक मेडिकल कंडीशन। इसका भूत प्रेत या पागलपन से कोई लेना देना नहीं।
लेकिन 1950 के दशक के ग्रामीण केंटकी में ये जानकारी कहाँ थी?
नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी।
तो इस मुश्किल सफर में उसका सहारा कौन बनता है?
उसके दादा दादी मटानी और पटानी, वो उसके लिए चट्टान की तरह है।
मटानी जो थोड़ी गर्मजोश हैं, सुरक्षा देने वाली, और पटानी जो शांत हैं, प्रकृति से जुड़े हुए।
हाँ, उनका प्यार बिना शर्त है, वही आईसी का एकमात्र भावनात्मक सहारा है। लेकिन
वो भी उतना ही हैरान और लाचार हैं जितने बाकी सब।
उन्हें प्यार तो है पर समझ नहीं कि ये हो क्या रहा है।
उनकी लाचारी भी दिल को छू जाती है।
और यहीं एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ प्यार काफी होता है?
ये एक गहरा सवाल है। मटानी और पटानी का प्यार आईसी को पूरी तरह बिखरने से बचाता तो है,
लेकिन क्या वो उसे दुनिया के तिरस्कार से बचा पाता है? मटानी का अपना अंदरूनी संघर्ष भी है, बेटी से प्यार और समाज का डर।
तो शायद नहीं, प्यार के साथ समझ और समर्थन भी जरूरी है। शायद जैसा कहा जाता है, प्यार हमेशा काफी नहीं होता अगर आप उसे सही तरीके से दिखा ना पाए।
इस प्यार और उलझन के बीच एक और किरदार आता है, मिस एमिली।
हाँ, आईसी की चौथी क्लास की टीचर, बाद में लाइब्रेरियन बन जाती हैं।
शुरू में वो एक उम्मीद की तरह हैं। वो आईसी की बुद्धिमत्ता को पहचानती हैं, उसके अजीब व्यवहार के पीछे की बच्ची को देखती हैं,
और उसे लाइब्रेरी में एक सुरक्षित जगह देती हैं। किताबें उसकी दोस्त बन जाती हैं।
हाँ, वो लाइब्रेरी आईसी के लिए एक पनाहगाह बन जाती है जहाँ उसे जज नहीं किया जाता।
लेकिन मिस एमिली का किरदार भी सीधा साधा नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू में वो सहारा देती हैं, लेकिन बाद में शायद सामाजिक दबाव या लगातार झेलने की वजह से उनका भी धैर्य जवाब दे जाता है।
अच्छा, मतलब वो भी थोड़ी दूरी बना लेती हैं।
हाँ, कुछ सूत्र यही बताते हैं। ये दिखाता है कि कैसे अच्छे इरादे वाले लोग भी समझ की कमी और सिस्टम के दबाव में अनजाने में ही किसी को अलग थलग करने में भागीदार बन जाते हैं।
ये तो संस्थाओं की विफलता भी दिखाता है, स्कूल, समुदाय।
बिल्कुल, और फिर वो पूरा समुदाय है ही, स्कूल के बच्चे जो उसे आईसी फ्रॉग कहकर चिढ़ाते हैं,
मिसेस टिल्टन जैसी टीचर जो उसकी हरकतों को शरारत समझकर सजा देती हैं,
चर्च के लोग जो मानते हैं कि उस पर शैतान का साया है। ये कोई एक विलन नहीं बल्कि एक पूरी भीड़ है, एक सामूहिक सोच है जो उसे हाशिए पर धकेलती है।
और ये दिलचस्प है कि उपन्यास का असली विलन कोई व्यक्ति नहीं बल्कि ये सामूहिक डर, अज्ञान और पूर्वाग्रह।
सही कहा, ये शायद किसी नफरत से ज्यादा अपनी सीमित समझ और चीजों को व्यवस्थित रखने की इच्छा से आता है। अनजाने का डर लोगों को क्रूर बना देता है।
आईसी की कहानी आगे कैसे बढ़ती है?
पहला दौर तो 10 साल की उम्र का है। बचपन का टूटना, स्कूल में मुश्किलें, अकेलापन, शर्म, वो खुद को ही नहीं समझ पा रही।
हाँ, ये पढ़ना भी बहुत मुश्किल लगता है।
फिर किशोरावस्था आती है और लक्षण और बढ़ जाते हैं। एक चर्च रिवाइवल में तो हालत बहुत बिगड़ जाती है, लोग उसे सचमुच शैतानी कब्जा समझ लेते हैं।
ओह, ये तो भयानक रहा होगा।
बहुत। इसके बाद वो और भी ज्यादा खुद में सिमट जाती है और फिर उसके दादा दादी को वो मुश्किल फैसला लेना पड़ता है,
उसे अस्पताल भेजने का।
हाँ, ब्लू ग्रास स्टेट हॉस्पिटल। ये उसकी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल दौर था।
अस्पताल का अनुभव कैसा रहता है?
वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं। माहौल ठंडा है, उपेक्षा भरा, उसे गलत निदान दिए जाते हैं।
लेकिन क्या वहाँ कुछ सकारात्मक भी होता है?
एक अजीब सी बात होती है, वहीं दूसरे मरीजों के बीच जो खुद समाज से बाहर किए गए हैं, उसे एक तरह के अपनेपन का, एक समुदाय का एहसास होता है।
शायद इसलिए कि वो सब किसी न किसी तरह अलग थे।
हाँ, शायद अंधेरे में भी इंसान कनेक्शन ढूंढ ही लेता है।
फिर वो घर वापस आती है।
हाँ, दवाइयों के असर में थोड़ी सुनसी होकर, लेकिन समुदाय का रवैया अब भी शक भरा है।
ब्रह एक उम्मीद की किरण दिखती है ना, विल से दोस्ती।
बिल्कुल, विल जिसके चेहरे पर जन्म से ही एक बड़ा लाल निशान है, पोर्ट वाइनस्टेन, वो भी एक बाहरी है।
और वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं बिना कहे।
हाँ, ये दोस्ती मरहम की तरह काम करती है। और फिर आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट,
जब उसे सही निदान मिलता है।
हाँ, एक नया डॉक्टर आता है जो आखिरकार उसकी हालत को पहचानता है और उसे नाम देता है टॉरेट सिंड्रोम।
सोचिए उस पल को, सालों की उलझन, शर्म, डर के बाद
उस राक्षस को एक नाम मिल गया, टॉरेट सिंड्रोम। शैतान नहीं, पागलपन नहीं, बस एक मेडिकल कंडीशन।
ये उसके लिए सिर्फ एक लेबल नहीं था, ये एक तरह की मुक्ति थी,
मनोवैज्ञानिक मुक्ति। उसे ये समझने में मदद मिली कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो बुरी नहीं है, बस उसका दिमाग अलग तरह से काम करता है।
ये नामकरण की ताकत दिखाता है ना, जब तक चीज गुमनाम थी वो डरावनी थी।
देखुल, समुदाय ने तो उसे जाने क्या क्या नाम दिए थे, पर सही नाम ने उसे अपनी कहानी को फिर से लिखने की ताकत दी, शर्म से निकलकर समझ की ओर।
तो क्या इसके बाद सब ठीक हो जाता है?
नहीं, ऐसा नहीं है कि टिक्स एकदम गायब हो जाते हैं, लेकिन अब आईसी उन्हें स्वीकार करना सीखती है।
खुद को स्वीकार करना, यह आसान नहीं रहा होगा।
बहुत मुश्किल, एक धीमी प्रक्रिया थी ये, लेकिन अब वो खुद को दो हिस्सों में बटा हुआ नहीं देखती, वो खुद को एक पूरे इंसान के रूप में महसूस करने लगती है।
और वो हाई स्कूल पूरा करती है।
हाँ, अंत में कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन एक यथार्थवादी उम्मीद जगती है। ये आईसी के हौसले की, उसके लचीलेपन की जीत है।
इस कहानी से कई गहरे विषय जुड़े हैं, एक तो यही कि समाज नॉर्मल किसे समझता है,
और जो इस दायरे में फिट नहीं होता उससे इतना डर क्यों लगता है। पॉपुलर हॉलर में तो अलग होने का मतलब ही खतरनाक था।
यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज भी हम उन चीजों से डरते हैं जिन्हें हम समझते नहीं।
बिल्कुल। दूसरा विषय है अलगाव बनाम समुदाय का सामाजिक बहिष्कार कितना तोड़ सकता है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ दादा दादी का प्यार, विल की दोस्ती, ये रिश्ते ही उसे बचाते हैं।
हाँ, सच्चा इंसानी जुड़ाव शायद यही हमें बचाता है।
और तीसरा, पहचान और आत्मस्वीकृति की तलाश। दुनिया आपको कुछ भी कहे, लेकिन खुद को जानना और स्वीकार करना।
बिल्कुल, खुद को स्वीकार करने का मतलब कमियों को मिटाना नहीं बल्कि अपने पूरे वजूद को अपनाना है, जैसा शायद उपन्यास में कहा गया, वो उसे ठीक करना चाहते थे जो टूटा नहीं था, बस अलग था।
कहानी कहने का तरीका भी खास है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, यानी आईसी खुद कहानी सुना रही है।
हाँ, इससे हम सीधे उसके एहसास, उसके डर, उसकी शर्म को महसूस कर पाते हैं। ये बहुत असरदार तरीका है और उसकी आवाज उम्र के साथ बदलती भी है।
भाषा भी बहुत खूबसूरत है, काव्यात्मक बद्य, अपलाचियन बोली का हल्का सा पुट।
हाँ, और टिक्स का वर्णन भी बहुत संवेदनात्मक है, जैसे बिजली का झटका या कोई हमलावर ताकत। ये भाषा हमें उसके अनुभव के बहुत करीब ले जाती है।
और प्रतीक भी हैं, प्रकृति, पक्षी, आँखें।
हाँ, ये सब कहानी को और गहरा बनाते हैं।
तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ टॉरेट सिंड्रोम या किसी खास जगह समय की कहानी नहीं है।
नहीं, ये हमें सिखाती है कि हम जिन्हें नहीं समझते उनके प्रति करुणा और समझ कितनी जरूरी है।
बिल्कुल, और ये इंसान के जज्बे की कहानी है, मुश्किलों के बावजूद अपनी पहचान बनाए रखने के साहस की।
हाँ, आईसी की कहानी दिखाती है कि मजबूत होने का मतलब शायद खुद होना ही है, चाहे दुनिया समझे या ना समझे।
ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज हमारे समाज में ऐसी कौन सी अदृश्य भिन्नताएं हैं जिन्हें हम बिना समझे खारिज कर देते हैं,
और हम कैसे ज्यादा समझ और करुणा दिखा सकते हैं, एक व्यक्ति के तौर पर भी और एक समाज के तौर पर भी।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एक्ट्रेस फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।